प्रातः क्लास चल रहा था 23/10/1966 रविवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी ये गुह्य बातों को समझने की बहुत बुद्धि चाहिए। इसमें भी जो पढ़े लिखे बुद्धिमान होवे रामायण महाभारत भागवत वगैरह उनमें मनन चिंतन की बुद्धि चला सकेंगे। तो बाबा ने बुढ़ी बच्चियों को तो कह दिया है कि उन शास्त्र आदि की बातों में टैली करने में बहुत बुद्धि चाहिए। नहीं तो बाबा कह देते हैं बुढ़ियों को कि भाई एक तो बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हारे बुद्धि योग लगाने से ये रावण राज्य खत्म हो जाएगा, ये सारा ही रामायण खत्म हो जाएगा। जो रामायण अभी तक पढ़ते आए हैं रामायण को भी बहुत पुराना दिखाते हैं ना, कितना पुराना है ऐसे नहीं कि तुलसीदास जब हुए कलयुग में तब रामायण शुरू हुई, नहीं द्वापर के आदि में ही रामायण शुरू हो गई। तो रामायण को भी बहुत पुराना दिखाते हैं परंतु जानते ही नहीं है कि रावण राज्य कब शुरू हुआ। तो ये तिथि तारीख भी लिखी जाती है तो रावण राज्य शुरू यानी रामायण शुरू। ऐसे नहीं है कि त्रेता में रामायण हुई, अभी रामायण शुरू तो फिर रामायण शुरू का भी रामायण खत्म होना चाहिए। तो महाभारत की लड़ाई से गीता, क्योंकि गीता का कनेक्शन है महाभारी महाभारत लड़ाई के लिए। कैसे? गीता ज्ञान सुनते हैं तो आत्माएं भाग खड़ी होती हैं भगवान के पीछे और जो रावण संप्रदाय हैं वो विरोध करते हैं। फिर महाभारी महाभारत लड़ाई शुरू हो जाती है। तो देखो गीता का कनेक्शन महाभारी महाभारत लड़ाई से है। भागवत है नहीं बीच में, क्योंकि तुम तो गीता सुनते हो और लड़ाई आ जाती है। तुम गीता सुन करके राजी भाग पाते हो, लड़ाई लगती है सफाया करने के लिए। ठीक है ना बच्चे? अभी भागवत के जो चरित्र हैं वो सभी फालतू हैं, क्योंकि शिव के चरित्र नहीं है ना, ये भागवत कोई शिव पुराण तो नहीं है ना। नहीं तो इनका नाम होना चाहिए शिव पुराण। किसका? भागवत का। तो शिव बाबा बैठ करके ये सभी बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो इनको होना चाहिए शिव पुराण। तो पुराण अभी बाबा कहते हैं गीता को ही, क्योंकि सबसे ऊंचा है गीता का शास्त्र। पुराण माने पुराण है थोड़ा बहुत, परंतु ये गीता छोटी क्यों बनाई है? क्योंकि इतने दूसरे सभी पुस्तक बहुत बड़े बड़े बनाए हैं। रामायण भी बड़ा बना दिया है, महाभारत भी बहुत बड़ा बनाया है, और देखो ये गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत बड़ा बनाया है। सब चीजें बड़ी बड़ी बनाती जाती हैं। मनुष्य की जीवन कहानी भी बड़ी बनाई है। देखो अभी ये नेहरू मर गया, उनकी कितनी वॉल्यूम से इतनी इतनी बनाती है मालूम है? अभी ये शास्त्री जी भी मरा है, इसका भी वॉल्यूम बनाए देंगे। क्यों भला? ये जो गीता है जिससे भगवान शिव बाबा आते हैं, तो उनकी वॉल्यूम कितनी बड़ी होनी चाहिए? पेज 10-66 की वाणी का तीसरा पेज दूसरी लाइन। बाप आकर के सिर्फ बच्चों को कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। ये मनुष्यों की जो लंबी चौड़ी वॉल्यूम्स बनाई हैं, इनको याद करने से तुम्हारा विकर्म विनाश नहीं होगा। और ये जो ड्रामा का चक्कर है ना, इसको सिर्फ समझो। इसलिए गीता का एक गुटका बनाते हैं इतना, ये दिखलाने के लिए कि गीता कोई इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े बड़े मनुष्यों के जीवन कहानी के वॉल्यूम्स बैठ बनाए हैं। गीता है बहुत छोटी कंठ करने के लिए। कंठ करने के लिए छोटी सी गीता बना है, कंठ में पहन लेते हैं ना, लॉकेट बनाते हैं। तो तुम बच्चों को मालूम है गीता का पुस्तक इतना, ये हमने खुद बनाया है, चांदी के सोने के इतने वो गुटके होते हैं, ताबीज होते हैं ना, उनमें सारी गीता भरी, बहुत पतले पतले अक्षर हैं, जिसका लॉकेट बनाते हैं। उन पतले अक्षरों का लॉकेट बनाए उसमें डालते हैं। देखो बाबा भी तुम्हारे गले में एक लॉकेट पहनाते क्या? उसका नाम है सच्ची गीता लॉकेट। सारे ज्ञान का सार तो एक तरफ में राज्य और एक तरफ में त्रिमूर्ति, ये लॉकेट बनाई ना, तो उसमें क्या है? बाकी कुछ है? कुछ बहुत लिखत कोई होती है थोड़ी सी। तो बाबा क्या कहते हैं? कुछ भी लिखत नहीं है, कुछ भी समझानी। ये तो भले तुमको डिटेल झाड़ का समझाते हैं, परंतु ये सारा ज्ञान तो दो अक्षर का है। क्या दो अक्षर? अलग और बे। ये कंठ कर लेना है तुमको। अलग कौन है? उर्दू में पहला अक्षर होता है अलफ और दूसरा अक्षर होता है बे। अलफ होता है खड़ा डंडा और बे होता है पड़ा डंडा। तो अलग कौन है? कौन? शिव बाबा खड़े हैं त्रिमूर्ति में, खड़े हैं है त्रिमूर्ति में। जीवन कहानी की बात बताई ना, जीवन कहानी जो दिखाई है, तो बाबा कहते मनुष्य की जीवन कहानी में जो कुछ धारा नहीं है, उसे याद करने से तुम्हारे पाप कर्म भस्म होने वाले नहीं है। तो कौन सी जीवन कहानी? आत्माओं के बाप ज्योतिबिंदु शिव की जीवन कहानी? वो तो हो न सके। तो वो शिव बाप जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं मुकर रूप से, उसकी जीवन कहानी है। तो बताया वो है अलग मना खड़ा। सतयुग आदि से ही लेकर के कलयुग अंत तक भी खड़ा, पड़ा नहीं। और बे कौन? ब्रह्मा। वो सतयुग के आदि में तो खड़ा रहा, लेकिन कलयुग के अंत में सब भूल गया, आत्म की स्थिति भी भूल गया। तो देखो ये दो अक्षर कंठ करने हैं, अलग और बी। लॉकेट वॉकेट की पहनने की कोई बात यहां है नहीं, है क्या? ये लॉकेट हमको नहीं पहनने का है। कौन सा लॉकेट की बात बताई? हाँ, जो त्रिमूर्ति का प्लास्टिक का बनाया, मेटल का बनाते हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण का चित्र डाल देते हैं, तो ये कोई तुमको पहनने का नहीं है। तुमको नहीं पहनने का तो किसके लिए बनाए हैं? वो बीके वाले पहनते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का लॉकेट पॉकेट में डाल लो, और वो पॉकेट में डालते हैं कि ऊपर डालते हैं? ऊपर डालते हैं। तुम्हारी पॉकेट कौन सी है? तुम्हारी है बुद्धि रूपी पॉकेट। बाकी ये पहनने की चीज नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए गुप्त बात है अंदर की। ये इसको कहा जाता है गुप्त मंत्र का लॉकेट, ये अंदर में पहनना है। मन मना भव मुझे याद करो, तो तुम्हारा जो विकर्म है विनाश हो जाएगा, और ये कथा तुमको सीढ़ी 84 की, वो सीढ़ी 84 की भी एक जन्म की एक सेकंड की बात है ना। 84 जन्म की सीढ़ी एक जन्म में कैसे आ जाएगी? संगमयुग में सारी 84 जन्मों की शूटिंग हो जाती है। तो समझने की बात है। अब यहाँ सत त्रेता द्वापर कलयुग, उसमें इतने इतने जन्म लिए, 84 का चक्र पूरा हुआ, तो ये है ना गिनती, ठीक है। तो देखो ये ज्ञान कितना थोड़ा है। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है, भाई इस सागर से स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ, तो भी फलाने बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे। ये सागर पूरा होता ही नहीं है, लिखते जाओ लिखते जाओ। तो देखो सुनाते भी आते हैं बरोबर, तुम ये जो कागज इकट्ठे करो शुरू से लेकर के, तो वो ढेर हो जाएंगे। इतनी जो मुरलियां चलाई हैं, वो ढेर कागज हो जाएंगे, कितनी पुस्तक बन जाएं। फिर भी वो क्या करते हो तुम सभी? वो है बाप बैठ करके डिटेल भी समझाते, और नटसेल में एक दो अक्षर भी समझाते, अलफ और बे, वो भी कहते रहते हैं। तो याद तुमको अलफ और बे करना है, बाकी इसमें सारा झाड़ का झाड़ आ जाते हैं, ड्रामा का ड्रामा आ जाते हैं। फिर ये टाइम इतना बड़ा क्यों लगता है? तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए टाइम लग जाता है। इसको याद का जो है ना, तो देखो याद की इसमें मुख्य बात रहती है। योग जिसको बाबा ने समझाया ना, भारत का प्राचीन योग। अब योग में ही तुम बच्चों को तकलीफ पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद घड़ी घड़ी तिरक जाती है। योग में ही तुम भूलते हो, और तो कुछ भी बात नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करो तो कभी भी विघ्न नहीं पड़ेंगे। क्या कहा? विघ्न कब पड़ते हैं? जब बाबा की याद भूल जाती है, सारा दिन याद नहीं करते हैं, तो कोई न कोई विघ्न आ जाते हैं। और अगर याद नहीं करेंगे तो विघ्न जरूर पड़ेंगे। अभी देखो हरेक से पूछो, बरोबर ना, जब देवहानी बनते हैं फिर कोई न कोई विकार में या फलाने में फंस जाते हैं। आत्मा बयानी बनते हैं तो बाप की याद आती है। देवहानी में आने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई न कोई विकार आ जाता है, विघ्न आ जाता है, याद टूट जाती है। अभी संगम युग में अगर लगातार देही अभिमानी बनती रहे तो ऐसे विघ्न आदि आना कुछ भी नहीं होगा। बस देही अभिमानी जब पिछाड़ी में बन जाते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो ना, तो फिर आधा कल्प तुमको कुछ भी विघ्न आदि नहीं पड़ता। ठीक है ना बच्चे? न कोई विघ्न, न कोई बात, न कोई झूठ, कुछ भी नहीं। तो देखो ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की और धारण करने की। परंतु भक्ति मार्ग में क्या क्या है अंबार कि शास्त्र वगैरह सभी इतने बम्बार है। भले कहती भी है कि पतित पावन वो ज्ञान का सागर है, बरोबर फिर ये भी सुनाते ही रहते हैं। कितनी बातें सुनाई हैं शुरू से लेकर के, फिर भी कहते हैं कि बस है अलफ और दो बे। उन्हीं का ये विस्तार है, बीज और झाड़ का बड़ा विस्तार है। बीज कौन है? सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है बाप, उसका विस्तार है। बीज का विस्तार होता है कि झाड़ का विस्तार होता है? बीज का विस्तार होता है। बीज में टिकने में कठिनाई है या झाड़ में विस्तार में जाने में कठिनाई है? बीज रूप में टिकने में कठिनाई है, विस्तार तो अपने आप हो जाता है। धरणी में बीज डाला और वो अपने आप बढ़ता रहता है। तो झाड़ का विस्तार, तो दोनों में बड़ा फर्क है, बीज और झाड़ में। रात दिन का फर्क। तो देखो ये बीज भी छोटे से छोटा है और झाड़ इतना बड़ा है। तो किसकी कहानी हुई? अलफ और बे की। बे माना ब्रह्मा, बाबा कृष्ण की सोल। कृष्ण की गोद में सारे धर्म की सब आत्माएं पलती हैं। तो जैसे कृष्ण की गोद में सारा झाड़ पड़ा है और बीज है, बीज सूर्यवंशियों का भी बीज, एक ही बीज। तो देखो ये एक बीज छोटे से छोटा, झाड़ इतना बड़ा। तो ये ज्ञान भी बिल्कुल थोड़े में थोड़ा है और विस्तार बहुत है। तो ये भेंट बाप समझाते हैं, क्योंकि आज दशहरा है ना, तो याद आ गया कि ये दशहरा है। तो दशहरा का, ये रामायण का महाभारत से क्या ताल्लुक है? पीछे ये तो भले भागवत भी है, भागवत बनाया ना, गीता भी बनाया, वो तो दोनों ही कहेंगे गीता और भागवत, महाभारत का पुस्तक, उसका रामायण से क्या ताल्लुक है? तो देखो रामायण भक्ति मार्ग और आधा कल्प भक्ति मार्ग। ये रावण का वो जलाते आते, ये सभी रावण का राज्य चल रहा है, रामायण चल रही है। 23:10-66 की वाणी का चौथा पेज, चौथी लाइन। पीछे ये जो महाभारत फिर आएगा उसमें क्या होगा? पहले रामायण चलती है कि महाभारत चलता है? पहले रामायण, ये सारी रामायण की कथा चल रही, फिर पीछे होता है महाभारत। तो महाभारत अभी हो गया कि होना है? बाबा कहते महाभारी महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। तो रामायण है रावण की स्थापना, और महाभारत है रावण राज्य को खत्म करना। ये महाभारत जिसके साथ ताल्लुक है ही गीता का, क्योंकि गीता से जब हम सुने और लायक बने विश्व का राजा बनने के लिए, तो सुनना तो पड़ता है ना। गोया गीता और ये महाभारत की लड़ाई, ये है रावण राज्य को ये खत्म करने के लिए। समझा ना बच्ची? रावण राज्य आधा कल्प शुरू होते, फिर तो खत्म होने का है गीता और महाभारत की लड़ाई से। लड़ाई तो जरूर है ना वहां की, सिर्फ फर्क क्या है? तो लड़ाई जो जिन्होंने दिखाई है ये महाभारत में, वो रंग है। लगी है लड़ाई, सारा खत्म हुआ है मिसाइल्स से। सारी दुनिया कैसे खत्म होती है? महाभारत लड़ाई से, तृतीय विश्व युद्ध से, या मिसाइल्स की चौथी लड़ाई से? बाकी तुम कोई रावण पर जीत पहनने के लिए या लड़ाई बड़ाई का झगड़ा नहीं लेते हो, समझे? तुमको तो बाप आकर के गीता के दो अक्षर सुनाते। गीता में है भी सारे विस्तार में, कौन से दो अक्षर? मनमना भव और मद्यादि भव। जब मनमना भव बन जावेंगे तो काय का यजन करेंगे। यजन करना माने स्वाहा करना। मनमना भव बनेंगे तो काय में स्वाहा करेंगे, और क्या स्वाहा करेंगे? तन मन और धन सारा ही स्वाहा करेंगे। कब? जब मनमना भव बनेंगे। तो अभी बने ही नहीं है। अच्छा, आदि भी मनमना भव, मध्यादि भव, अंत भी मनमना भव, मध्यादि भव, बीच में है विस्तार गीता में। तुम लोग गीता शायद कोई पढ़ी है? बहुत कोई ने पढ़ी है गीता? अच्छी तरह से हाथ उठाओ। तो गीता में है अक्षर, शुरुआत में भी है मनमना भव और पिछाड़ी में भी है मनमना भव। माम एकम, मुझे एक को याद करो। मुझे एक को याद करो माने एक बिंदी को याद करो। है बिंदी को कैसे पहचानेंगे? बिंदी बिंदी सब एक जैसी, कौन सी एक बिंदी को याद करो? है जो बिंदी मुकरर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, है? दो रथ बताए ना, एक टेम्परेरी और मुकरर रथ। तो टेम्परेरी रथ तो ब्रह्मा के बहुत हो गए, मुकरर रथ तो एक ही है। तो अब बच्चे समझ गए कि ये गीता का एपिसोड चल रहा है। इस समय में ये एपिसोड चल रहा है, परंतु अगर गीता हम लोग कहेंगे किसको गीता है? गीता किसको कहेंगे? किसको कहेंगे है? गीता माता है या गीता बच्चा है? है हा? अभी कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहाँ होगा बच्चे के रूप में? सचिव में होगा क्या? तभी गीता। परंतु अगर गीता यही कृष्ण है, फिर इनके ऊपर आ जाएगा ये कृष्ण है, ये देखो इनकी गोपियां हैं, ये किसको भगाते हैं, और ये गोपियां किसको नचाती हैं, किसको जादू लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, देखो कितना रात दिन का फर्क है। बाप के समझाने में और ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना इस फर्क को कोई जानता होगा बच्ची? ये किसी की बुद्धि में होगा कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है? महाभारत की लड़ाई के बाद स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, तो कहा जाता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। और फिर जब ये रामायण शुरू होती है तो नरक के दरवाजे खुलते हैं। क्या कहा है? रामायण कब शुरू होती है? द्वापर के आदि से। तो काय का दरवाजा खुलता है? नरक का दरवाजा खुलता है। और महाभारत होता है तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। ये ठीक है। अभी ये कहानी ये बातें तुम अगर किसको बताएंगे ना, तो वो कुछ भी नहीं समझेंगे। एकदम बोलेगा ये पता नहीं क्या बोलते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ ऐसा कहने से आएगा किसको समझ में? समझ में आएगा? अथवा सिर्फ कहने से उनको अलफ को याद करो और बे को याद करो तो इस बात में कुछ समझ जाएंगे। अलफ माना बाबा, बाबा तो है ही बाबा। किसको कहा जाता है बाबा? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। और बाबा से तो वर्षा मिलेगा। क्या कहा? कोई कहे ब्रह्मा बाबा भी साकार था और शिव बाबा वो निराकार, तो दोनों के मेल को बाबा कहें? क्यों नहीं? ब्रह्मा बाबा से वर्षा मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मन वर्षा तो मिल ही नहीं पाता, वो खुद भी वर्षा नहीं ले पाते, खुद ही सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ जाते हैं। तो सो तो है ही हेवनली गॉड फादर। कौन है? शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा है हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता, स्वर्ग की स्थापना करने वाला। स्वर्ग की स्थापना करके जाते हैं, राजधानी स्थापन करके जाते हैं, या ब्रह्मा अथवा और धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम करके जाते हैं? तो बाबा से तो स्वर्ग मिलेगा, वर्षा मिलेगा। इसलिए उस बाबा को याद करो। क्या कहा? इस बाबा को नहीं, दूर इशारा करके बताया। दूर क्यों कर दिया? हाँ, क्योंकि तो छछाछट की वाणी है। उस समय तो प्रैक्टिकल में बाबा बाबा के रूप में आया ही नहीं था वर्षा देने वाला। तो कहा उस बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये बाबा है। फिर याद आएंगे गीता के दो अक्षर हुए, मनमना भव वाले के, कि बाबा कहते हैं अभी कृष्ण नहीं है, वो ऐसे समझ जाएगा कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कौन समझ जाएगा? कृष्ण समझ जाएगा। कृष्ण वाली आत्मा आगे चल करके समझ जाएगी कि किसको याद करना। अभी क्या समझता है कृष्ण? कि गीता का साकार भगवान मैं खुद हूँ, मेरे को याद करो। फिर वो समझ जाएंगे। उसको याद करने से वो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। तो उसमें है भगवान वाच, किसमें? इसमें भगवान वाच नहीं है। किसमें है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो कुछ बोला गया वो भगवान वाच नहीं है। ये भगवान ने नहीं बोला, जो मुरलियां बोली हैं ब्रह्मा के तन से वो भगवान ने नहीं बोली। क्यों है? अरे बिंदी को थोड़े ही भगवान कहा जाता है। बिंदी को भगवान कहा जाता है क्या? भगवान जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करे, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा वर्षा मिले, उसे भगवान बाप कहा जाता है। अभी कृष्ण नहीं कह सकते हैं कि मेरे को याद करो। अभी माने कब है? संगम युग में। अभी कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा नहीं कह सकते हैं कि मुझे याद करो। क्यों? वो तो विनाशी तन हो गया। विनाशी को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? विनाशी बन जाएंगे। कृष्ण तो रूह है। मुरली वाला छोटा बच्चा दिखाते हैं ना, अभी वो तो नहीं कहेगा ना कि माम एकम याद करो। माम एकम बाप तो कहते हैं सारी दुनिया के लिए। क्या कहा? जो बाप कहते हैं माम एकम याद करो, वो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए कहते हैं कि सारी दुनिया 500-700 करोड़ के लिए कहते हैं माम एकम याद करो है? सारी दुनिया के लिए कहते हैं माम एकम याद करो। वो माम एकम का कोई रूप धरा है चित्रों में है? नहीं धरा है। और झाड़ के ऊपर कौन बैठा है? वो एक ही है कि अनेक है? एक ही है। माम एकम याद करो। तो सारी दुनिया के लिए कहते हैं, कोई भी धर्म वाला हो सबके लिए कहते हैं माम एकम याद करो। तो क्या होगा? तुमको अपना अपना सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा। तो आत्माओं को कहते हैं ना बच्चे, तो इसमें कृष्ण की तो बात ही नहीं उठ सकती है बिल्कुल। तो देखो एक ही गीता को कितना सारा खंडन किया हुआ है। सारी दुनिया में बच्ची गीता का बहुत प्रभाव है। सब धर्म वाले मानते हैं कि जितना ज्ञान गीता में है उतना उनकी बाइबल कुरान आदि में नहीं है। बहुत प्रभाव है। तो गीता सभी लैंग्वेजेस में है। इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस में है ना, तो गीता का प्रचार है। और जब तुम राज करेंगे तो तुम्हारी लैंग्वेज ही एक होगी। गीता का प्रभाव प्रचार नहीं होगा। जब तुम्हारा राज्य शुरू होगा तो गीता का प्रचार नहीं होगा, कोई लैंग्वेज में नहीं होगा, कुछ भी नहीं एकदम। 23:10-66 की वाणी का 5वां पेज दूसरी लाइन। और लैंग्वेज भी अनेक नहीं होंगी। जो अनेक लैंग्वेजेस में गीता का अनुवाद या व्याख्याएं निकले या ट्रांसलेशन हो, एक ही लैंग्वेज होगी। कोई भी पुस्तक वगैरह बाइबल साइबल दूरचाई कुछ भी नहीं होगा। क्या कहा? बाइबल को क्या बताया? ये बाइबल साइबल कुरान आदि क्या है? ये धूर छाई है। धूर छाई माने इनको पढ़ने से देह अभिमान की धूल छा जाती है। तो क्या है ये? धूल छाई है। ये सतयुग में कहां से होगा? क्या बाइबल साइबिल सतयुग में तुमको ये सब बातें, भक्ति मार्ग की बातें, ये पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। क्यों? वहां पर्दा क्यों नहीं होगा? देह अभिमान ही नहीं है तो पर्दा क्यों होगा? द्वापर युग से क्या होता है? देहभान है तो अपने अपने देहभान को छिपाने के लिए पर्दे बनाए हुए, न वहां कोई नावल पढ़ी जाती है, न वहां शास्त्र पढ़े जाते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ राज विद्या राजाई के लिए पढ़ाई जाती है, राजाई करने की विद्या पढ़ाई जाती है, राजाई चलाने के लिए पढ़ाई जाती है। सूत्र जरूर पढ़ेंगे और एक लैंग्वेज होगी तो वो एक लैंग्वेज भी सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? वो भी सीखेंगे, पढ़ेंगे। वो तो छोटे बच्चों को तो जरूर सिखलाना होता है, नहीं तो छोटे बच्चों को क्या कुछ मालूम पड़ेगा? तो ये शास्त्रों में बस और दूसरा कोई शास्त्र है ही नहीं, दूसरे किसको कोई ताल्लुक नहीं है, है ही भारत का ताल्लुक इनसे, किनसे हैं? भारत का ताल्लुक किनसे है हैं? अरे ये बाइबल से, कुरान से, धर्म ग्रंथ से है? भारत का ताल्लुक नहीं है, किससे ताल्लुक है? इनसे, रामायण से और महाभारत से। महाभारत के साथ गीता का ताल्लुक है। और सुनाने वाला भगवान है। क्या गीता सुनाने वाला भगवान है? ब्रह्मा नहीं है? है नहीं? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, ये नहीं कहते हैं ब्रह्मा के मुख से गीता निकली, ब्रह्मा के मुख से महाभारत निकला, नहीं। तो भगवान तुम बच्चों को गीता सुनाते हैं जिससे तुम मालिक बन जाते हो। तो फिर ये महाभारी महाभारत लड़ाई जरूर लगनी चाहिए। किस लिए? जो ये सारी दुनिया खत्म हो जाए, पतित दुनिया खलास हो जावे, क्योंकि गीता से तो तुम पावन बनते हो, है? गीता से पावन बनते हो, ये तो समझ सकते हो कि भगवान पतित पावन आते ही हैं गीता के ज्ञान द्वारा। क्या कहा? पहले गीता ज्ञान आता है कि पहले भगवान आते हैं? पहले ज्ञान आता है फिर भगवान प्रत्यक्ष होता है। तो बताया कि ये बात तुम समझ सकते हो कि भगवान पतित पावन आते ही हैं गीता के ज्ञान द्वारा। गीता के ज्ञान द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। फिर से सुनाओ, है ना, फिर से सुनाओ। तो आकर के ऐसे ही कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर तुम बच्चों को जीतना है। किस पर? कामविका पर जीतना है। तो जीतने के लिए भागना है या लड़ना है? है? साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो तो भाग जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं? है? तो भाग जाती हैं आश्रम बना करके। और तुम क्या करते हो? घर गृहस्थ में रहते विकारों पर जीत पाते हो। तुम तो माया से लड़ाई लड़ते हो कि भाग जाते हो? तुम तो विकारों से लड़ाई लड़ते हो। बिना लड़ाई लड़े कोई विजय पाता है क्या? हा? तो फिर से सुनाओ, काम महाशत्रु है। तो देखो काम के ऊपर ही कितना बाबा जोर देते हैं। यहाँ भी बोलते हैं, अरे भाई बच्चों विकार में नहीं जाना है। क्या? विकार में नहीं जाना है। अरे माया से युद्ध भी करना है और विकार में भी नहीं जाना है, ये क्या चक्कर है? है? अरे युद्ध करना है तो आमना सामना करना पड़ेगा कि नहीं? वो विकार में नहीं जाना है, क्या मतलब हुआ? विमाने विपरीत कर्म न कार्य, किसके विपरीत कार्य? हाँ, बाप ने जो डायरेक्शन दिया है, न दुख दो न दुख लो। इंद्रियों से क्या देना है? इंद्रियां सुख देने के लिए हैं या दुख देने के लिए हैं? इंद्रियों से सुख देना है और इंद्रियों से सुख लेना। सुख दुख बिना इंद्रियों के लिया जा सकता है क्या? नहीं। तो सुख देना है सुख लेना है। इंद्रियों से न दुख देना है न दुख लेना है। फिर विकार में नहीं जाना माना काम से हार नहीं खाना। हार खाना माना विपरीत कार्य माना क्या हुआ? विकार। वि माने विपरीत, कार माना कार्य, यानी बाबा ने जो बताया है उससे विपरीत नहीं जाना। इंद्रियों से उत्तेजना में आकर के क्या नहीं करना? दुख दुख नहीं देना है। अगर दुख देना, देने वाले ने देख दुख दिया और लेने वाले ने दुख लिया, तो क्या होगा? आदत पक्की पड़ जाएगी। और जब पक्की आदत पड़ जाएगी तो हार खाई या जीत पाई? हार खा ली। तो काम देखो कितना महाशत्रु है, कितना नुकसान कर देते हैं। काम के पिछाड़ी लड़ाइयां लगती थी राजाओं की। क्या ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? क्या करता था? है? उसने चढ़ाई की ना राजस्थान में, किस लिए की? है? है कि चढ़ाई करेंगे तो बाकी रानियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो काम के पिछाड़ी कितनी लड़ाइयां लगती थी राजाओं की। बड़े बड़े विलायत वाले राजा भी, बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर्स काम के पिछाड़ी नाम बदनाम कर देते हैं। आखानियां निकलती हैं ना उनकी काय में, है? अखबारों में वो फलाना फलाना था, वो एक बड़ी माई निकली थी, उनके पिछाड़ी गया, कोई वहां का वजीर चला गया, फिर उनका मालूम पड़ गया कि इनके साथ ये गंदा काम करते थे, फलाना करते थे, तो वो कितना नाम खराब हो गया था। ये काम के पिछाड़ी सारी खराबी बिल्कुल हो जाती है। क्या कहा, भारत का पतन कब हुआ है? भारत का पतन द्वापर में ज्यादा हुआ या कलयुग में हुआ? कलयुग में हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया है? पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगाया ना। संयोगिता से उसका क्या संबंध था है? संबंध क्या था? पत्नी? पत्नी नहीं थी, वो भाई की लड़की थी, तो कौन हुई? बेटी हुई ना, और बेटी को भगाया तो भारत के राजाएं विरोधी हो गए। कोई ने पृथ्वीराज चौहान का फिर साथ नहीं दिया। मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए ना, फिर उन राजाओं ने साथ नहीं दिया, तो हार गया या जीत गया? हार गया, और उसके बाद से भारत का पतन ही होता रहा। तो ये काम विकार के पिछाड़ी सारी खराबी होती है बिल्कुल। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, बाबा के पास आते तो बहुत हैं यंगस्टर्स, देखो जवान जवान बच्चे आते हैं, तो कोई को भी समझाते हैं, सन्यासियों हो कोई भी हो, ऐसी बच्ची है और पवित्र भी है, ऐसे मत समझो कि कोई पवित्र दुनिया में मनुष्य नहीं है। क्या कहा, आज भी दुनिया किस आधार पर चल रही है? हैं? दुनिया में कोई न कोई पवित्रता की ताकत है जिसके आधार पर दुनिया चल रही है। शादी नहीं करते हैं, सारी आयु ब्रह्मचारी होते हैं, वो तो हुए सन्यासियों में भी भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, परंतु ऐसे मत समझो कि कोई यहाँ भारत में या विलायत में या कहाँ भी कोई सारी आयु पवित्र नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। नहीं, बहुत ही ऐसे हैं जो रह सकते हैं। किसका मिसाल देंगे? ये माइयां भी देखो, ये गिरजाघरों में नंस होती है ना, ये कोई विकार में नहीं जाती है बच्ची, ऐसे तो होते हैं ना कि नहीं जाती हैं? तो भले वो जब नहीं जाती हैं, तो खेल फिर क्या, क्यों नहीं कोई जा सकते हैं? परंतु यहाँ सिर्फ पवित्रता की तो बात नहीं है ना, कि एक जन्म में अगर वो पवित्र रहा तो उससे क्या फायदा होगा? गिरजाघरों में ऐसी बहुत सी नंस होती हैं, विकार में नहीं जाती, एक जन्म पवित्र रहती हैं, लेकिन उनके एक जन्म से पवित्र रहने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ यहाँ तो संगम युग में एक जन्म अगर कोई पवित्र रहते हैं तो बहुत फायदा है। तो ये तो बात है जन्म जन्मांतर स्वर्ग का मालिक बनने की, ये संगम युग की बात है। उसमें बैठ करके जन्म जन्मांतर का पाप कटना है तभी फिर स्वर्ग में चलना है। सो तो बाप आकर के ये युक्ति सिखलाते हैं। क्या क्या युक्ति सिखलाते हैं? है जिससे इस जन्म में पवित्र रह सको, क्या युक्ति सिखलाते हैं? है घर गृहस्थ में रहते क्या करो, बाप को याद करो, बाकी इस कलयुग की जन्म की बात नहीं है। इस संगम युग की जन्म में तुम जान चुके हो कि जन्म बाई जन्म मनुष्य पाप में जरूर जाते हैं। समझो एक जन्म में कोई नहीं कोई सन्यासी बना, अच्छा सन्यासी भी बने तो भी बल सन्यासी बनते हैं पवित्र रहते हैं तो भी जन्म काय से होता है, विकार से ही तो जन्म हुआ। पतित पने से तो जन्म होता है ना, ये रावण राज्य है ना, इसमें तो विकार विगर तो जन्म होता ही नहीं ना। तो इस बात के ऊपर तुम्हारे से बहुत मनुष्य पूछते हैं, बाबा के पास भी कब चिट्ठी आती है कि बाबा फिर वहां सतयुग में जन्म कैसे होगा? तो बाबा पूछते हैं भोग बल किसको कहा जाता है और योग बल किसको कहा जाता है? है भोग बल में इंद्रियों की क्या हालत होती है और योग बल में इंद्रियों की क्या हालत होती है? है भोग बल बढ़ने से इंद्रियों में और ही जागती उत्तेजना बढ़ती जाती, इंद्रियां मार करने वाली बन जाती हैं। दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुषों की के शीतल हो जाती है, है? मार करने वाली बन जाती है, पाप करने वाले बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं। और योग बल किसको कहा जाता है? योग बल से इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तो फिर पूछते हैं ये बाबा कैसे होगा, ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं। अब ये पूछने की भी किसी को जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लो, मामेकम याद करो, औरों को याद करके देख लो, औरों में लगाव लगेगा तो देवान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मामेकम याद करेंगे तो क्या होगा? हैं? जैसे मैं हूं वैसे ही बनेंगे। ओम शांति।